ओम शांति। जनवरी मास अव्यक्त बाप दादा की याद में अव्यक्त स्थिति बनाने पर विशेष अटेंशन रहा है। अव्यक्त इशारे हम यहाँ रोज मिलते रहे हैं। बाबा का आवाहन है सभी बच्चे बाप समान बन जाएं, कोई भी कम नहीं। कोई भी आज अपने जैसा बनाने का आवाहन नहीं करता है, बाबा ही है जो बच्चों को अपने जैसा संपूर्ण रूप देखता है। बच्चे मेरे जैसे ही हैं, एक एक वरदान उस संपूर्णता की अनुभूति कराता है। बाबा के वरदान मिलते ही रहते हैं, मीठे बच्चे हर रोज हम सुनते हैं। विश्व कल्याणकारी स्वदर्शन चक्रधारी विजयी रतन अनेकानेक वरदानों से बाबा ने झोली भर दी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि वो वरदान हम अपने आप को सुनाएं, क्योंकि अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण करने के लिए शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना की आवश्यकता है। पहले ऐसा लगता है कि हमें अपने लिए शुभ भावना जगानी है, जो बाबा ने जगाई है। बाबा ने कहा है तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, सारे विश्व में चुने हुए रतन हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, स्वराज्य अधिकारी हो, होवनहार विश्व के मालिक हो। ये हम अपने आप को जब सुनाते हैं, अपने लिए शुभ भावना जब क्रिएट करते हैं, तब दूसरे के लिए भी यही भाव क्रिएट होता है। पहले चाहिए स्व स्थिति, और स्व स्थिति का आधार ये बाबा के वरदान है। हम इसको स्वीकार करते हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं कल्याणकारी हूं, मैं सफलता मूर्त हूं, मैं विजयी रतन हूं, स्वदर्शन चक्रधारी हूं। जब हम अपने आप के लिए ये भाव जागृत करते हैं, हमारे मन में अपने लिए ऐसे संकल्प इमर्ज होते हैं, तब दूसरे के लिए हमारी दृष्टि ऐसी ही हो जाती है। और ऐसे संकल्पों को हमें क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप नहीं चलते। हम दूसरों पर जब दृष्टि डालते हैं तो भी उनके कमियां और उनके गुण सब कुछ दिखाई देता है। इसीलिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है दिखाई देता है, और वाणी में भी आता है। हरेक के प्रति दृष्टि एक जैसी नहीं होती। क्योंकि हमने अपने लिए इतनी ऊंची दृष्टि बनाने का शुभ संकल्प हर रोज क्रिएट करना है। बाबा ने सिखा दिया, अपने आप से बातें करो। क्या बातें करो? बाबा ने मुझे ऐसी विचार शक्ति दी है, मुझे इतनी ऊंची संकल्प शक्ति दी है, जिन संकल्पों में इतनी शक्ति भरी हुई है कि हम जो संकल्प करते हैं वो हो जाता है। मैं इतना श्रेष्ठ शक्ति स्वरूप हूं, सबसे बड़ी शक्ति है विचार शक्ति। वो विचारों में श्रेष्ठता, विचारों में महानता, विचारों में सेवा भाव, विचारों में सहयोग का भाव बाबा ने भर दिया है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब हम इन वरदानों से की वर्षा हम पर नहीं होती। हर रोज की मुरली वरदानों से हमारी झोली भर देती है। बाबा ने हमारे लिए क्या क्या कहा है, जब लिखने बैठ जाएं हजारों शब्द लिखे जा सकते हैं। इतने श्रेष्ठ भाव बाबा के हमारे ऊपर हैं, इतनी ऊंची दृष्टि। कल्प पहले वाले चुने हुए रतन हो, एक एक बाबा का महावाक्य हमारी स्थिति बनाने वाला है। हमने उसको स्वीकार किया है। बाबा ने कहा तुम ऐसे हो और हमने स्वीकार किया है कि मैं ऐसा हूं। ये जो स्वीकार करने का भाव है वो बार बार हमारे मन में रिवाइज होता रहे। इसको बाबा ने कहा है विचार सागर मंथन करो। जो ज्ञान दिया बाबा ने, वरदान दिया, उसका मंथन करें, उसका रिवीजन करें, बार बार अपने आप को सुनाएं। जो दृढ़ होता है उसकी शक्ति दूसरों को मिलती है। हमारे अंदर कितनी शुभ भावना है, हमारे अंदर कितनी श्रेष्ठ भावना है, इसकी पहचान तब होती है जब कोई हमारी निंदा करता है, हमारा विरोध करता है, हमारी करेक्शन करता है। अगर हमारे अंदर शुभ भावना की शक्ति है, श्रेष्ठ भावना की शक्ति है, उस समय भी हमारी स्थिति डावाडोल नहीं होती है। जो बाबा कहते एक रस अवस्था रहे, अचल और अडोल स्थिति रहे, ये जो भाव भावना बाबा के मिले वरदानों को हमने पक्का किया है, वो पहचान उस टाइम होती है जब परीक्षा की घड़ी आती है। उन आत्माओं के लिए भी हमारे भावों की श्रेष्ठता कम न हो, हमारी दृष्टि उस समय भी ऊंची रहे जो हम अपनी बड़ी दादियों में देखते हैं। सामने जाने पर कितने वरदान देती हैं, बाबा ने कहा है तुम महावीर हो, अचल अडोल अंगद की तरह हो। वो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहती है, एक रस रहती है, हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम परेशान नहीं होते, हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे सामने बहुत विघ्न है, मेरे सामने बहुत बाधाएं हैं, मुझे बहुत परिस्थितियों से क्रॉस होना पड़ता है, ऐसा महसूस नहीं होता, वो वरदान वहां भी काम आते हैं। बड़ी बातें छोटी दिखाई देती है। अगर ये शुभ भावना हमारे अंदर ना हो तो छोटी बात बड़ी महसूस होती है और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा ने कहा आपके अंदर इतनी शक्ति हो कि हर परिस्थिति पर आपकी स्व स्थिति का प्रभाव हो, ना कि परिस्थिति आपको बनाए। अनुकूल वातावरण है, सम्माननीय वातावरण है और हम ठीक है, अच्छे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने विपरीत परिस्थितियों में स्व में स्थित होकर चलना सिखाया है, इसीलिए विघन विघन नहीं लगते। एक बहुत छोटी सी परिभाषा हमें याद रहती है, विघन किसे कहते हैं? किसी के कहे हुए शब्द, किसी का किया हुआ व्यवहार जब बार बार याद आता है, बार बार याद आता है, हम उसको पास इस पास नहीं कर सकते हैं, वो विघन है। हर घड़ी आती है और चली जाती है, जिस घड़ी की बातों को हमने पकड़ लिया, स्टोर कर लिया और बार बार याद आती है और हमें कांटे की तरह चुभती है, हम डिस्टर्ब होते हैं, वही विघन है। तो दूसरे के द्वारा किया हुआ व्यवहार विघन नहीं है, हमने जिन बातों को पकड़ लिया है वो विघन है। दूसरे को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, हमने जिन बातों को पकड़ लिया है उसको वरदानों के बल से हम उसमें परिवर्तन लाते हैं। हम अपनी स्थिति से जरा भी नीचे ना आए, बाबा के पास खड़े होकर हर दृश्य को देखें, बाबा हमारे साथ है, उसकी अनुभूति हमारे साथ रहे। जब बाबा के साथ की अनुभूति हमारे साथ रहती है तो हर बात को पार करना आसान हो जाता है। बाबा ने अनुभव कराया है, हर कदम बाबा के साथ साथ रहे, बाबा हमारा साथी है, ये कहने से नहीं होगा, साथ लेकर चलना है। जब बाबा को साथ लेकर चलते हैं तो बाबा से ही बातें करते रहते हैं। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, बाबा के कमरे में गए, छुट्टी लेने नहीं गए, हम बाबा को अपने साथ ले चलने का निमंत्रण देने गए, बाबा हम जा रहे हैं और आप हमारे साथ चलें, और हम बाबा को साथ लेकर बाहर निकले हैं, हम ऐसा अनुभव करते हैं, फिर क्या करना होगा? काम खत्म हो गया। आप किसी को साथ लेकर चलो तो आपको उसका केयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप आगे निकल जाओ पीछे रह जाए, ध्यान देना होगा, उनको हर जगह सम्मान देना होगा, उनसे बातें करना है, उनको साथ लेकर चलना है, याद रखना है मेरे साथ है, हर जगह पहले उनको बिठाएं फिर हम बैठें, उनसे ही बातें करते रहें, हमारे ध्यान में रहे हम किसको साथ लेकर आए हैं। अगर ऐसा साथ पकड़ने का अभ्यास कर लें और बाबा से हमारी मीठी मीठी बातें होती रहे, क्या होगा? हमें ऐसा महसूस होगा, जिम्मेवार, पालनहार, करण करावनहार साथ है, फिर मैं बिल्कुल लाइट हूं, हमारे को भारीपन नहीं आएगा, वही सब कुछ कर रहा है, वही देख रहा है, वही गाइड कर रहा है, तो हमें कैसा महसूस होगा? लाइट रहेंगे, हल्कापन महसूस होगा, फ्रेश महसूस करेंगे। जैसे बाबा हर कदम बाप दादा साथ साथ रहे और हमारे साथ बाप दादा रहे, कितनी मीठी अनुभूतियां हम सभी करते हैं, यहाँ सभी अनुभवी मूर्त बैठे हैं, कदम कदम बाबा को साथ लेकर चलने वाले बैठे हैं, तो बाबा के ये अनुभव, बाबा की ये शक्तियां चला रही हैं हम कितनी छोटी उम्र में आए, मुझे याद है मैं 6 वर्ष की उम्र में पहली बार कोटा हाउस में आई थी समझा 53 में, और आज तक बाबा ने कभी भारी होने नहीं दिया। कई अपना अनुभव सुनाते हैं, बड़ी परीक्षाएं आई, बड़ी बाधाएं आई, बहुत बाधाओं से निकलना पड़ा, लेकिन हमें ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हमेशा लगा बाबा ने रास्ते साफ कर दिए, विघ्न बाधा तो जरूर आएगी। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आई थी, मुझे एक कविता सिखाई थी, और वो कविता भी बाबा की ही लिखी हुई थी, और वो मैंने बाबा के आगे सुनाई थी। मैं भी आपको भी सुनाती हूँ सुना हाँ, कविता थी, सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेल के बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। फिर मैंने कहा अनजान से, पहचानते नहीं थे बाबा कौन है, मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर, जिधर था वो चल दिया मैं भी उधर चली। क्या हुआ, कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, एक ही व्यक्ति चल सकता था, दो नहीं चल सकते थे। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, मैंने क्या किया पीछे पीछे चलती रही। जब रास्ता तय हो गया दुनिया नई मिली, फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी तो ये मुझे कविता बाबा की लिखी हुई है और मुझे याद कराई थी। मुझे याद है जब पहली बार मैं बाबा से मिले, मैंने बाबा को ही कविता सुनाई। दादियां ये गीत की तरह गाती थी और मैंने कविता की तरह सुनाई, और वास्तव में यही हमारा अनुभव भी है। कांटों से भरा रास्ता तो कहीं मिला ही नहीं, अगर कहीं मिला भी होगा तो बाबा आगे है हम पीछे हैं, वो कांटा भी नहीं लगा। तो इस तरह से बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए, हर जगह पार करने वाला साथ साथ रहा है। ऐसी मीठी अनुभूतियों से हम वहां से यहाँ तक पहुंच गए, बहुत आनंदित, बहुत खुशियों से भरा। हर दिन बाबा ने अपने वरदानों से चलाया है, ठीक है, यही हमारा अनुभव है। ओम शांति